नमस्ते। बुक थ्री कैंटो थ्री में हम लोगों ने पिछली बार न्यू क्रिएशन के बारे में, नई सृष्टि के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, एक झलक ली थी। और मूल रूप से यह था कि जो पुरानी सृष्टि में जो अभी भी है वो ईगो पर आधारित है। वहाँ हर व्यक्ति अपनी मनमानी, इंडिविजुअल विल, एक फाइनाइट सृष्टि है, हर एक व्यक्ति अपनी फाइनाइट सीमाओं में रहता है। और चूंकि असीम अनंत हमेशा पीछे रहता है, उसके अंदर एक असीमता और अनंतता में प्रवेश करने की नेचुरल वृत्ति रहती है। किंतु अज्ञान में वो व्यक्ति डिजायर सेल्फ के थ्रू वो करता है कि मैं कितना अधिक चीज़ों को एक्युमुलेट कर लूँ, मेरे ईगो का कितना बड़ा एम्पायर हो जाए। तो अज्ञान में वो उसी असीमता और अनंतता को रिक्रिएट करने की चेष्टा करता है, या मृत्यु के पैसेज से जाकर कितना अधिक एक्सपीरियंस पूरे संसार का मैं समेट लूँ। और इससे पोषित होता हुआ, तैयार होता हुआ मनुष्य नई सृष्टि के लिए तैयार होता है। नई सृष्टि क्या है? ये ओरिजिनल प्लान है डिवाइन का। तो ओरिजिनल प्लान और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पे वही सृष्टि अब भगवान फॉर्म्स के माध्यम से प्रकट करना चाह रहे हैं। और अगर हम देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, यही ओरिजिनल विल है जो सृष्टि के अंदर गई है, लेकिन एक लंबे समय तक वो फॉर्म्स क्रिएट किए जा रहे हैं। और इस तरह क्रिएट किए जा रहे हैं कि एक दिन वो भगवान की उच्चतम ऊंचाइयों को, उनके पूर्ण सत्य को प्रकट कर सके वो फॉर्म। लेकिन वो फॉर्म्स एक लंबे समय तक इवन हाफ कॉन्शियस रहते हैं मनुष्य के अंदर। थोड़ा उनके जो फॉर्म्स हैं उनके अंदर इतनी स्फूर्णा चेतना जागती है कि वो सीकर बन जाए। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है ह्यूमन बीइंग के साथ, और वहीं से एक नई यात्रा प्रारंभ होती है। और उस यात्रा में हमें करना क्या होता है, हमें अपनी विल को डिवाइन विल से ट्यून करना होता है। हमें अपने माइंड को, उसके लिमिटेड नॉलेज को भगवान की इन्फिनिट नॉलेज से ट्यून करना पड़ता है, या ओपन करना पड़ता है, जिसको शेरविंद कहते हैं सुप्रामेंटल प्लेनरी इल्यूमिनेशन। हमें अपने सीमित हृदय को भगवान के असीम सुप्रीम डिवाइन लव के साथ, स्वीटनेस के साथ, आनंद के साथ जोड़ना होता है। हमें अपनी सीमित प्राण की ऊर्जा को भगवान की अनंत ऊर्जा के साथ, अनंत शक्ति के साथ जोड़ना होता है। और इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब इवन फॉर्म को, इस बॉडी को हम जोड़ सकेंगे भगवान के रेडियंस, लाइट, पीस के साथ। तो ये ट्यूनिंग प्रारंभ में अंदर शुरू होती है। मनुष्य के अंदर ये संभावना आ गई है कि वो सीमित होते हुए भी अपने को असीम के साथ जोड़ सके। दिस इज योग। योग का जो एसेंस है वो यही है कि सीमित सत्ता का असीम सत्ता के साथ जुड़ना। अब उसको दो तरह से हम देख सकते हैं कि जुड़कर उसमें समाप्त हो जाना, सीमित समाप्त हो गया। दूसरा हम ये देख सकते हैं कि वो सीमित एक बाहरी पर्सनालिटी के रूप में रहता है, हमारी पहचान असीम के साथ होती है, और हम सीमित को यूज़ करते हैं जस्ट टू एक्सप्रेस डिवाइन विल को मैनिफेस्ट करने के लिए संसार में, डिवाइन ओमनीपोटेंस को, डिवाइन ओमनीसियंस को। तो ये ओरिजिनल प्लान है। और अब उस दिशा में धीरे धीरे शेरविन बताते हैं कि समय आ गया है जब हम ओरिजिनल प्लान को, कम से कम कुछ लोग ऐसे हों जो ओरिजिनल प्लान को संसार में मैनिफेस्ट कर सके। इसमें कार्मिक लॉ कहाँ आती है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि कभी आपने सुना है कि पशुओं के साथ भी कार्मिक लॉ अप्लाई करती है, तो मनुष्य के साथ क्यों करती है? कार्मिक लॉ क्या है? कार्मिक लॉ यह है कि अब भगवान ने हम लोगों को एक अप्रेंटिस क्रिएटर के रूप में प्रकट करना शुरू किया है। वी आर ऑल अप्रेंटिस क्रिएटर्स, क्योंकि भगवान अब चाहते हैं हमको क्रिएटर की तरह बनाना, अपनी तरह बनाना। तो अप्रेंटिस क्रिएटर क्या होगा? तो आप जैसे स्कूल में जाते हो तो आप भूल करते हो तो आपको सिखाया जाता है ऐसे नहीं। अब आप एक दृष्टि से देखो तो वो दंड है, दूसरी दृष्टि से देखें तो वो प्रयास है परफेक्शन की तरफ। जब एक बच्चा मिस्टेक करता है राइटिंग में तो टीचर कहता है 10 बार लिखो। तो अब एक तरफ से आप देखेंगे तो वो लगेगा कि बच्चे को पनिशमेंट दिया जा रहा है। बच्चा अपने दृष्टि से तो यही देखता है कि क्या मेरा, मुझे पनिशमेंट मिल रहा है। लेकिन टीचर की दृष्टि से देखें या बच्चा जब एडल्ट हो जाता है तब देखें तो वो ये कहेगा कि मेरे टीचर बहुत अच्छे थे, क्यों मुझे 10 बार उन्होंने वो चीज़ करवाई, देखो मेरी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी हो गई। तो मनुष्य के अंदर चूंकि एक मिनी क्रिएटर है, इसीलिए अनलाइक एनिमल्स क्या है, जैसी जो अवस्था है उसको स्वीकार करके रहते हैं। कभी आपने ये देखा नहीं होगा कि एनिमल्स इनोवेट करें। जो मनुष्य के संपर्क में आते हैं उनमें थोड़ा बहुत ये टेंडेंसी आती है, नहीं तो जैसे प्रकृति उनको रखती है वैसे रहते हैं। मनुष्यों के अंदर ये संभावना आ जाती है कि वो इनोवेट करे, यानी वो एक मिनिएचर क्रिएटर है। लेकिन उसको क्रिएशन में एक चीज स्मरण रखनी है कि कोई भी उसका संकल्प जो क्रिएट कर रहा है किसी चीज को, वो ओरिजिनल डिवाइन विल से अलग नहीं जा सकती है. इट हैज टू बी इन लाइन. उसको फ्रीडम दी गई है लेकिन विद इन दोज डिवाइन विल से अलाइन करके. तो जब वो करने लगता है एक पॉइंट के बियॉन्ड, असुरों की तरह जब वो क्रिएट करता है, तो एक हिटबैक होता है नेचर का. उसको कहा जाता है नो, तुम अब अलाइन करो इसके साथ. और जब वो अलाइन करके क्रिएट करता है तो फिर वंडर, ब्यूटी और डिलाइट होती है. यही डिफरेंस है. तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है. हम लोग अब नर्सरी से निकल गए हैं. नर्सरी में जब मनुष्य रहता है तो वो कहता है भगवान सब कुछ मेरे लिए कर दे, स्पून फीडिंग कर दे. तो तब वो बहुत तामसिक एफर्ट में, तब वो उसके ऐसी चीज़ें होती हैं, कहता है कि वो भगवान ने ये सब किया, खुद कर देते सब कुछ, कर देते तो हम पशु जैसे रहते. बट नाउ द डिवाइन वॉन्ट्स अस टू बिकम कॉन्शियस क्रिएटर्स. सावित्री में एक लाइन है ना, को शेयरर्स ऑफ हिज डिविनिटी, वी आर सन्स ऑफ गॉड एंड मस्ट बी इवन एज ही. अब चूंकि वो ये चाहते हैं, अब देखिए आप एक क्लास तक टीचर आपको पिलाता रहता है, आपको उसको एग्जाम में करना है. जैसे ही आप ग्रेजुएशन और पीएचडी में जाओगे तो एक आप करोगे रिसर्च और टीचर का रोल ये होता है कि आपको गाइड करना ताकि एक दिन आप टीचर की ही तरह आप समर्थ शिक्षक बन जाओ. तो ये प्लान है. तो वो ओरिजिनल प्लान क्या है, तब जब सब कुछ हो जाएगा वैसा सुंदर तो सृष्टि कैसे होगी, उसका हम दर्शन पा रहे हैं. और उसमें एकत्व तो होगा, एक चीज है उसमें आनंद होगा. सुख दुख दोनों ही आनंद के अंदर डूब जाएंगे. सुख दुख नहीं होगा क्योंकि वो अज्ञान से जन्म लेते हैं. संपूर्ण ज्ञान होगा अभी नहीं, वो अज्ञान जिसमें हम, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, उसके अंदर दिव्य प्रेम होगा. उसके अंदर सारे श्री अरविंद एक एक करके बता रहे हैं, ओमनीपोटेंस होगी. ओमनीपोटेंस का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी चाहें कर देंगे. आप डिवाइन विल से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते. ये फ्रीडम है नहीं. ये एक इल्यूजन है फ्री विल का. आपकी फ्री विल का सीमा है डिवाइन विल. आप फ्री विल को वहीं तक ले जा सकते हैं जहां तक आप डिवाइन विल के ओरिजिनल प्लान को एकदम ध्वस्त ना कर सके. इसीलिए आप देखेंगे असुर एम्पायर क्रिएट करता जाता है. जिस दिन वो ओरिजिनल विल के लास्ट थ्रोन से टकराता है, वो कोलैप्स कर जाता है. बिकॉज यू कैनॉट डू इट. वो संभव ही नहीं है. आप सोर्स के परे जाकर के नहीं कर सकते हैं. तो लेकिन चूंकि वो इन्फिनिट है इसलिए उसमें बहुत फ्रीडम है, बहुत स्कोप है. लेकिन जिस दिन हम ये सोचते हैं कि हम सेपरेट हैं, अलग हैं, हम अपनी मनमानी करेंगे, तो नेचर अलाउ नहीं करती. क्यों? क्योंकि वो हमें सिखा रही है कि हम में से कोई भी यहाँ पर मनमानी करने के लिए नहीं है. ये लेसन ऑफ नेचर है. ये प्रोसेस है. अब हम उसको कार्मिक थ्योरी, जस्टिस, रिवार्ड, पनिशमेंट, बट इट इज नथिंग टू डू विद रिवार्ड पनिशमेंट. ये एक ट्यूनिंग है, हमें सिखाया जा रहा है क्योंकि हम सबको अब क्रिएटर की तरह बनना है. तो दैट इज हाउ द होल प्रोसेस इज. अब यहां पे हम लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे. हाउस ऑफ स्पिरिट, तो वहां पे वो घर कैसा है भगवान का, थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था. अब इसको आगे, तो वहां पे क्या होगा भगवान के घर में? क्या लोग सीरियसली बैठ के मेडिटेशन कर रहे होंगे? क्या सबके दाढ़ी मूछ होगी? क्या सब लोग एक दंड लेके, कमंडलू लेके बैठे होंगे? क्या सबने भोजन प्यास त्याग दिया होगा? क्या सब एक रंगा कपड़ा पहनेंगे? क्या हंसना मना होगा? गुनाह होगा? क्या संगीत नहीं होगा? क्या खुशी नहीं होगी? ऐसी हम लोगों ने एक पिक्चर पेंट कर दी है मोनेस्ट्री के आधार पर. लेकिन अगर आप देखें जो भगवान के घर का जो ओरिजिनल प्लानिंग का जो प्रयास माता जी ने, पहला प्रयास है वो आश्रम में प्रयास है, हाउस ऑफ द स्पिरिट, टू क्रिएट समथिंग लाइक हियर. और यहाँ पर जब आप पढ़ो इवनिंग टॉक्स को, तो वो तो बहुत कुछ है जो आप इवनिंग टॉक्स में पढ़ेंगे, और वो ज्ञान तो अलग चीज़ है. लेकिन आप उसमें कई जगह साइड लाइट्स देखना, तो बात होती है कि कोई बात करता है ट्रांस की, तो श्री अरविंद कैसे हाफ स्माइलिंग कहते हैं वो व्यक्ति निद्रा में चला गया, और सब लोग बर्स्ट करते हैं लाफ्टर में. ये एक अद्भुत चीज़ है. आप थ्रू आउट देखेंगे, आप माता जी की राइटिंग्स पढ़ो, माता जी की राइटिंग्स में ये सब तो आप ज्ञान तो है. यू टच दोज लाफ्टर्स, दोज मोमेंट्स ऑफ साइलेंस. फॉर्चुनेटली किसी ने लिखा हुआ है वहां पर, ये बहुत अच्छी बात है, लाफ्टर. अब आप जब उसको पढ़ते हो तो दिखता है कि हाउ ब्यूटिफुल दिस न्यू वर्ल्ड कुड बी. लोग इतना फ्री और आनंदित, सब ऐसे महसूस करते थे एज इफ दे आर नियर टू गॉड्स, ऐसा महसूस करते थे लोग. अभी भी जो लोग सही स्पिरिट में रहते हैं, दे फील लाइक दैट, क्योंकि उन्होंने एक ओरिजिनल टच यहां पर धरती की लिमिटेड कंडीशंस में, मनुष्य की कंप्लीट रिफ्यूजल और रेजिस्टेंस के बावजूद एक जो इमेज आप देखेंगे कि एक आज ही व्हाट्सएप पे एक पिक्चर आई थी मल्लयुद्ध की, है ना, पुरानी जी सिखा रहे हैं, माता जी वहां बैठ के मल्लयुद्ध देख रही हैं। तो इसमें हम लोगों ने वो भी पढ़ा था कि इवन जो सीमिंग स्ट्रगल है, ऐसा लगता है कि रेसल हो रही है, वो भी एक रूपांतरित हो जाएगी इन्हें क्लैस्प एंड जॉय। अब इसका एक उदाहरण ये कि ये रूपांतरण का एक जो दिशा आप देखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पहले क्या होता था, लोग युद्ध करते थे, भयंकर भयंकर युद्ध करते थे, और युद्ध ही जो ये राजसिक एलिमेंट है फाइट करने के लिए, उसके लिए यही एक माध्यम था कि वो अपनी इस ऊर्जा को बाहर निकाल सके। और क्षत्रिय दे यूज टू लुक फॉरवर्ड कि हम वार में जाएंगे। उसके बाद रूपांतरण क्या हुआ कि एक स्पोर्ट्स के रूप में आया, लेकिन स्पोर्ट्स कैसी थी, ग्लेडिएटर्स, आप जीत गए तो जीत गए, नहीं तो आपका गला काट दिया जाएगा। उसके बाद एक रूपांतरण क्या आया, आप देखेंगे कि अब ये ओलंपिक्स आ गया, ओलंपिक साइन। इसीलिए आप देखेंगे कि माता जी ओलंपिक्स के सिंबल के ऊपर कमेंट करती हैं और कहती हैं कि ये सिंबल कैसा होना चाहिए। और एक माता जी ये तक चाहती थी कि एक बार ऑरोविल में ओलंपिक्स हो, शी वॉन्टेड दिस। तो जिमनास्टिक्स, ओलंपिक्स, अब वही जो ऊर्जा है धीरे धीरे चेंज हो रही है। ओलंपिक्स में भी आप युद्ध करते हैं, रेसल करते हैं, लेकिन उसमें रेसलिंग का प्रयोजन अलग है। और जब आप इसको जीत जाते हैं तो आप फर्स्ट आए, कोई फर्स्ट आए, कोई सेकंड आए, बट बाद में यू आर फ्रेंड्स। अब यही चीज आप देखेंगे कि जितनी भी मिस्टिक स्पोर्ट्स थी उसमें ये सिखाई जाती थी। जूडो में, कराटे में क्या सिखाया जाता था, यही प्रिंसिपल था, डू नॉट वेस्ट एनर्जी। आपने ओपोनेंट के साथ लड़ने के पहले आप झुक के सलाम करेंगे, खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप बो डाउन करेंगे। पिंग पोंग होता था, स्पिरिचुअल गेम होता था, तो पिंग पोंग जो आप टेबल टेनिस है, तो उसमें ओरिजिनल टेबल टेनिस कैसे होता था, आपने पिंग इधर से मारा, है ना, अभी तो कंप्यूटर में आ गया पिंग, यानी आपको स्मरण दिलाया, तो आपने एक पिंग किया, तो पिंग करने के बाद आप बो डाउन करते हो, अब उधर से पोंग हुआ तो वो बो डाउन करता है। इट वॉज ए स्पिरिचुअल गेम, जितने भी ये सारे गेम्स थे। अब देखिए माने धीरे धीरे उसी ऊर्जा को लगा दिया यहां पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज, वही ऊर्जा है। और जब आप इससे पोषित होकर तैयार हो जाते हैं तब आपको क्या करना है, मैन हैज टू यूज हिज फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स टू फाइट अगेंस्ट हिज ओन ईगो। वही रूपांतरण हो रहा है धीरे धीरे, जो उसकी वारिंग इंस्टिंक्ट्स थी, जहां वो विश्व युद्ध महायुद्ध, वहीं पर कुछ लोग ऐसे हों जो अब उस लड़ाई की जो इंस्टिंक्ट है उसको अपने अंदर अपने ईगो को, डिजायर को जीतने में लगा दे। पर ये एक प्रोसेस है, ये इवोल्यूशन की। पर एक थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे 325 पेज पर, शायद लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, द मोमेंट्स थॉट इंस्पायर्ड द पासिंग एक्ट। अब देखिए एक छोटी सी लाइन है, इसमें क्या नई बात है, इंटरेस्टिंग बात है, द मोमेंट्स थॉट इंस्पायर्ड द पासिंग एक्ट। इसमें एक डिवाइन स्पॉन्टेनिटी है, एक स्पॉन्टेनिटी वाइटल स्पॉन्टेनिटी है, जिसमें जो डिजायर आता है वो थॉट का फॉर्म लेता है और व्यक्ति उसको एक्सप्रेस करता है। और एक डिवाइन स्पॉन्टेनिटी है जहां थॉट्स आते हैं आपको इंट्यूटिवली और आप उसको एक्सप्रेस करते हैं। बीच में माइंड कैसे ऑपरेट करता है, माइंड ऐसे नहीं करता है, मोमेंट्स थॉट इंस्पायर्ड द पासिंग एक्ट। माइंड कहता है कहूं कि ना कहूं, है ना, कहने से मेरा क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा, उसने जो कहा उसके पीछे क्या मंशा थी। अब ये एक मेंटल वर्ल्ड है जिसके कारण इतना केओस है, क्योंकि माइंड के पास कोई तरीका नहीं है ये जानने का। सच तो ये है कि इसके पीछे प्रयोजन क्या था, अपने ही इंटेंशंस को माइंड नहीं जानता है। लेकिन देखिए एक छोटी सी लाइन है न्यू क्रिएशन की, द मोमेंट्स थॉट इंस्पायर्ड द पासिंग एक्ट, ए वर्ड, ए लाफ्टर स्प्रैंग फ्रॉम साइलेंस ब्रेस्ट। ये एक आनंदित जगत है जहां साइलेंस है, नॉइज नहीं है संसार की। यहां साइलेंस कैसा साइलेंस है, वो जो क्लटर सब समय डिजायर्स की नॉइज, मेंटल नॉइज, वो नहीं है, एक साइलेंस है। और साइलेंस के हृदय से आनंद, निरोधा बताती है ना रसो वैसा हा, किस तरह से एक दिन झगड़ा होता है, लड़ाई होती है दो बड़े वरिष्ठ साधकों के बीच, बड़े क्लोज, अद्भुत। और कोई श्री अरविंद को रिपोर्ट करते हैं आज उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बहुत बाता बाती हुई, गर्मा गर्मी हुई। शेरविंद ऐसे नहीं, हाँ, उनको कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। श्री अरविंद कहते हैं भाई देखो जब अग्नि अग्नि से मिलेगी तो क्या होगा, और अभी तो इट इज ऑलमोस्ट मिड समर नाउ, तो सब लाफ्टर में बर्स्ट आउट कर जाते हैं। किस तरह से देखिए कि भाई दोनों ही तेजों में है, दोनों ही अंगार हैं, मिल गए तो अग्नि और प्रज्वलित हो गई, और अभी तो सूर्य पूरे अपने तेज पर है। तो इस ए लाफ्टर ए वर्ड ए लाफ्टर स्प्रैंग फ्रॉम साइलेंस ब्रेस्ट, कितने सारे श्री अरविंद के इस प्रकार के उस महा साइलेंस में से जो उनका जॉय जो हास निकलता है। जब किसी ने कहा कि लेकिन ये तो छोटी सी एक भूल है, तो श्री अरविंद कहते हैं तुम मुझे वो कहानी स्मरण करा रहे हो जो एक महिला थी जो कार्य करती थी किसी के घर में, तो प्रेग्नेंट हो गई, तो जो वाइफ थी वो उसको गुस्सा है, उसने कहा कि ये क्या किया तुमने, ये क्या हो गया, तो कहती लेकिन मैडम छोटी सी तो चीज है, मतलब द बेबी इज वेरी स्मॉल, छोटी सी तो भूल है। तो श्री अरविंद कहते हैं कि इस तरह से, और हाउ ही कुड ब्रिंग एवरीथिंग इनटू ए माइटी लाफ्टर। ये साइलेंस, यानी हम श्री अरविंद के साइलेंस, ये जो साइलेंस है श्री अरविंद का, ये ग्रिम साइलेंस नहीं है, स्टोन का साइलेंस नहीं है, ये सन्यासी का साइलेंस नहीं है, ये उस वैरागी का भी साइलेंस नहीं है जो दुनिया से वीतराग होकर चला गया है, लोग अक्सर ऐसे समझ, ये वो साइलेंस है जहां से सृष्टि का आदि स्वर फूट रहा है, और सृष्टि का आदि स्वर आनंद स्वरूप है, ये वो साइलेंस है। इन ए रिदम ऑफ ब्यूटी इन द काम ऑफ स्पेस, देखिए दोनों चीजें, बैकग्राउंड में काम है, साइलेंस है, लेकिन सामने क्या है, रिदम ऑफ ब्यूटी। ए नॉलेज इन द फैदमलेस हार्ट ऑफ टाइम, All turn to all without reserves recoil. यही तो उन्होंने प्रयास किया ना बनाने का, आपको आने पहचान कैसे आपकी, अच्छा आप माता जी के बच्चे होते हैं ना, एक आपके अंदर आप कहीं भी जा रहे हो, I still remember, अच्छा बाहर जाके ये ज्यादा आभास होता है, जब आप बाहर रहते हो ना, जब आश्रम ज्वाइन नहीं करते, ट्रेन में अचानक मिल गए, आपने एक रिंग देख ली उसके अंदर माता जी का सिंबल, अब क्या हुआ ना आप भूल गए, बाकी सब डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा ये कहाँ से मिली, प्रारंभ वहां से होता है, देखिए तो हम गए थे आश्रम ऐसे मिली, अच्छा आप आश्रम गए थे कब गए थे, वो बात का पूरा एक चीज अलग हो जाती है। वहीं दूसरा आप शुरू करिए, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, आपने वहां से शुरू किया कि आप देखो आज तो ये हो गया, मोदी जी ने ये हो गया, उसने ये कर दिया, और दोनों फिर डिबेट करना शुरू करते हैं, तो देखिए ये बेसिस कितना डिफरेंट है। तो ये जो भाव है, जब हम ये भाव से जुड़ते हैं कि हम सब माँ की संतान हैं, लेकिन इसको अल्टीमेटली आपको इसको व्यापक बनाना है, ये आप आश्रम तक कन्फाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आश्रम में वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, उसके बाद ऑरोविल लार्जर ग्राउंड, उसके बाद पूरे विश्व में, लेकिन प्रारंभ वहां से। ए सिंगल एक्सटेसी विदाउट ए ब्रेक, लुक एट द जॉय ऑफ इट, a single ecstasy without a break, love was a close and thrilled identity in the throbbing heart of all that luminous life. किसने जोड़ा हुआ था सबको, लव ने, और अभी भी आपको कभी, अब तो खैर जो भी एक साल से आप नहीं देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने तो देखा है यहाँ पे, आप बैठे और अचानक आप देखेंगे कि समाधि के एक तरफ एक व्यक्ति खड़ा है, दूसरा व्यक्ति दूसरी तरफ, तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के परम शत्रु मान के बैठे, लेकिन कॉमन चीज क्या है, माता जी का प्यार, वहां जाके वहां एकदम यूनियन है, कोई बात हो जाए तो आप यूनाइटेड हैं, है ना, कि उस दिन माता जी से किसी ने कहा वो व्यक्ति देखिए वो इसको ऐसे कहता रहता है, वैसे उसको कहता रहता है, आपने इसको क्यों रखा हुआ है, माँ कहती हाँ व्यक्तियों से झगड़ा करता है, लेकिन कभी मेरे अगेंस्ट कुछ बोल के देखो क्या करेगा, खड़ा हो जाएगा। तो ये एक एक चीज है कॉमन जो यूनाइट करती है, उसी प्रकार से ये प्रारंभ एक एग्जाम्पल है। ए यूनिवर्सल विजन दैट यूनाइट्स, ए सिंपैथी ऑफ नर्व रिप्लाइंग टू नर्व, हियरिंग दैट लिसन्स टू थॉट्स इनर साउंड, तो कन्फ्यूजन होगा नहीं, अभी तो ये थॉट्स इनर साउंड तो हम नहीं सुनते हैं, हम तो वर्ड सुनते हैं, उसके पीछे का भाव हम अपनी कल्पना से भरते हैं, जैसा हमने किसी व्यक्ति के बारे में सोचा हुआ है ना, एक परिकल्पना बनाई है, हम भाव वहां भर देते हैं, क्योंकि हमारा एक्सेस नहीं है वहां पर, तो व्यक्ति कह रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं और आपके मन में चल रहा है, क्यों कह रहा है, कुछ तो पर्पस है, क्यों, क्योंकि ये मेरे से कुछ लाभ लेना चाह रहा है, क्यों आपकी ये वृत्ति है लोगों से लाभ लेने की, इसलिए आप उसके अंदर ये देख रहे हैं, क्या पता सहज भाव से आज उसके हृदय परिवर्तन हो गया, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं। और उसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति भी ऐसे रिएक्ट करता है। हम सब संसार में बहुत सारा एक अननोन का फील्ड है और हम उसको किससे भरते हैं, अपने ही चेतना से। इसीलिए कहा गया है कि वर्ल्ड इज ए मिरर, तो बाहर जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं, लेकिन हम अपनी चेतना से रंगते जा रहे हैं सबके अंदर जो जो मोटिव्स हैं। तो ये वहां नहीं होगा, क्यों, वहां पे थॉट्स इनर साउंड, कि उसके पीछे कौन सा स्तर है, वाइब्रेशन है। थॉट की इनर साउंड क्या है, जो वाइब्रेशन जो थॉट को बाहर में, थॉट इज व्हाट, इट्स ए वाइब्रेशन, जिसको जिसने कपड़ा पहना हुआ है शब्द का, शब्द एक वस्त्र है, एक वेसल है, शब्दों के अंदर क्या है, ध्वनि है। आप अभी भी देखिए, सेम शब्द आप डिफरेंट ध्वनि से कहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखिए आपने क्या किया, वही शब्द हैं ध्वनि। आप ध्वनि के पीछे मंतव्य, मंतव्य और भी अलग है, जो ओरिजिनल स्टर है जो इंस्पायर कर रही है, यही डिफरेंस है जब शिव हलाहल पीते हैं और संहार करते हैं और जब असुर हलाहल पीते हैं और संहार करते हैं, यही डिफरेंस है उसके पीछे जो ओरिजिनल वाइब्रेशन है। एंड फॉलोज द रिदमिक मीनिंग्स ऑफ द हार्ट, ए टच दैट नीड्स नॉट हैंड्स टू फील टू क्लास्प, वेयर देयर द नेटिव मीन्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड हाइटन द इंटीमेसी ऑफ सोल विद सोल। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर सेंसेस हैं, सुप्रामेंटल सेंसेस हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर फॉर्म जो है उसकी क्लैरिटी नहीं है, वो जो फॉर्म है कंक्रीट नहीं है, वहाँ मैटर है एक्सट्रीमली प्लास्टिक टू स्पिरिचुअल लाइट, लेकिन इसके कारण क्या है कि वहाँ इंडिविजुअलिटी नहीं है, तो ये समस्या है जिसके कारण ये सारा एक्सट्रीम बंजी जंपिंग जो भगवान ने किया, एकदम बिल्कुल इनकॉन्शियंट में प्लंज हो के। एंड हाइटन द इंटीमेसी ऑफ सोल विथ सोल, ए ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स, ए डायापसॉन ऑफ सोल इंटरचेंज, हार्मोनाइज्ड वननेस डीप इमेजरेबल, इन दीज न्यू वर्ल्ड्स प्रोजेक्टेड ही बिकेम ए पोर्शन ऑफ द यूनिवर्सल गेज, ए स्टेशन ऑफ द ऑल इनहैबिटिंग लाइट, ए रिपल ऑन ए सिंगल सी ऑफ पीस। जब ओरिजिन, जब कालांतर में हम लोग भगवान बन जाएंगे, का मतलब है हर व्यक्ति भगवान के एक विशेष एस्पेक्ट को प्रतिनिधित्व करेगा कॉन्शियसली, उसके पीछे सारा बाकी ट्रुथ रहेगा, इसलिए उसको किसी और को समझने में समस्या नहीं होगी। अभी क्या है, एक आर्टिस्ट साइंटिस्ट को नहीं समझ पाता है, लेकिन एक आर्टिस्ट पूरी साइंस उसके पीछे है, एक साइंटिस्ट के पीछे पूरी आर्ट उसने जानबूझकर पीछे रखा हुआ है, क्योंकि वो एक कॉन्शियस फ्रंट में एक एस्पेक्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी भी डिवाइन यही करते हैं, अपने अनेकों गॉड्स की के साथ एक एस्पेक्ट को मैनिफेस्ट करते हैं, दूसरे को करते हैं। अंतर क्या होता है, डिवाइन के अंदर ये पूरी अवेयरनेस है कि दिस इज माय डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट, दिस इज द क्रिएटिव एस्पेक्ट, दोनों की हार्मनी। लेकिन यही गॉड्स जब आगे चले जाते हैं तो वो समझते हैं कि आई एम द अल्टीमेट, और वहीं से फॉल प्रारंभ होती है। तो वी हैव टू रीच दैट पॉइंट अगेन, जहां हम लोग कॉन्शियसली डिवाइन को एक्सप्रेस करें। अब ये चलता जाता है, अब नेक्स्ट उसमें, अब ये तो घर होगा, भगवान का घर है, हाउस ऑफ द स्पिरिट, उसका मालिक कौन होगा। अभी तो हमारे घर में हम सब अपने ईगो के मालिक हैं, और घरों में देखिए कितनी कलह क्लेश किस लिए होता है कि घर में कौन मालिक है। अब पुराने समय में जो ओल्ड ऑर्डर था, वहाँ पे जो फादर होता था वो मालिक होता था, पुरुष माने वेदांतिक उसमें, और काम कुछ करेगा नहीं, काम सारा महिला कर रही है, लेकिन वो वेदांतिक ट्रुथ था ना, तो फादर वॉज द बॉस, ये ओल्ड मॉडल था, तो क्या करता था, केवल वेदांतिक पुरुष की तरह सैंक्शन करता था। वो महिला पूछती थी, मैं ये कर रही हूँ जी, कर दूँ, हाँ कर दो, नहीं मत करो, उसको चुप रहना है, उसको जो करना है उसके लिए वो किसी की परमिशन नहीं ले रहा है, कहीं जाना है, चला गया। अब वो घर में सब लोग सोच रहे कहाँ चला गया, चला गया मेरी मर्जी। लेकिन अगर महिला जाती थी तो हंगामा होता था, क्यों चली गई, कहाँ चली गई, ये ओल्ड मॉडल था। अब जो न्यू मॉडल आएगा वो कैसा होगा, अब यहां पर बीच में वो तोड़ दिया भगवान ने, तो अभी क्या है, सब कहते हैं हमारी मर्जी घर, अब कोई सा हम किसी को, आज के बच्चे ये नहीं बोलते कि पिताजी मैं जाऊं, आज के बच्चे चले जाते हैं, आप मैक्सिमम बहुत अच्छा बच्चा वेल बिहेव्ड होगा तो कहेगा मैं आपको केवल इन्फॉर्म कर रहा हूं, ये कृपया बच्चे ध्यान ना दें इस बात पर, लेकिन वो क्या बोलते हैं, आई एम इन्फॉर्मिंग यू, इन्फॉर्म कर दिया बहुत कृपा हुई तुम्हारी है ना, बहुत आपने इन्फॉर्म कर दिया, बहुत मेहरबानी हुई कम से कम हमारा हार्ट पीस, ये बीच की एक दशा है, लेकिन इसके बाद जो आने वाला है उसमें क्या होगा, ये होगा, ये तोड़ना था, ये नहीं तोड़ने से नई नया जगत नहीं आ सकता है, इसलिए आप देखेंगे कि फैमिली सिस्टम समाप्त हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, दे आर ऑल गॉन, उसको आप रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ट्रेनिंग के लिए थी, अभी भी उसका एक रोल है हल्का सा, एज ए ट्रेनिंग ग्राउंड, अब हमको विश्व मानव बनना है, तो अब क्या रहेगा, इंडिविजुअल यूनिट, नेशन यूनिट, वर्ल्ड यूनिट, ये तीन यूनिट रहेंगी, और तीनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट रहेगा, जो शेरविंद वंदे मातरम में बताते हैं बंगला राइटिंग्स में, वो कहते हैं यूनियन कैसे लाई जाए भारत के अंदर, कहते हैं कि तुम रिलीजियस टॉलरेंस, इंटरफेथ डायलॉग ऐसे नहीं आएगा, सबको करने दो उनका जो विश्वास है, लेकिन कैसे आएगा, अगर हिंदू मुसलमान सिख ये समझने लगे, ईसाई, कि ये हमारी माँ तो एक है, भारत माता, वंदे मातरम, जिस दिन वो ये जान जाएंगे कि माँ तो हमारी यही है, बाकी ठीक है हम अपना जो भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन माँ एक है, हम एक माँ की संतान है, तो आपके अंदर ये चेंज प्रारंभ होगा, ये शेरविन ने बहुत पहले ये बात कही हुई है बांग्ला राइटिंग्स में, एंड इट इज सो ट्रू, और अब धीरे धीरे इसकी चेष्टा हो रही है, इस दूसरे ढंग से हो रही है, नेशन यूनिट, कि भाई आप अलग अलग हो सकते हो लेकिन राष्ट्र के एक झंडे के नीचे हम सब एकजुट हैं, जुड़े हुए, आप उसको कैंसिल करके नहीं कह सकते हैं कि हम हमारी तो अपनी आइडियोलॉजी है, राष्ट्र अपनी जगह, इफ यू डू दैट देन देयर इज अ डेंजर, आप अपने अपने रिलीजन जो भी फॉलो करते हैं करिए, लेकिन राष्ट्र की नेशन यूनिट के अंदर ये सब लोग जुड़ेंगे। अब यहां श्री अरविंद कैसे सुंदर ढंग से बता रहे हैं, द इटर्नल गॉडेस मूव्ड इन हर कॉस्मिक हाउस स्पोर्टिंग विद गॉड एज ए मदर विद हर चाइल्ड, टू हिम द यूनिवर्स वॉज हर बूजम ऑफ लव, His toys were the immortal verities. All here self-lost had there its divine place. The powers that here betray our hearts and err were there sovereign in truth, perfect in joy. कौन सी पावर है जो बिट्रे करती है और अर करती है? ऑलमोस्ट सारी पावर्स, नॉलेज बिट्रे करती है, अर करती है, लव बिट्रे करता है, अर करता है। तो यहां पर लोग इतना घबरा जाते हैं कि लोग कहते हैं नहीं नहीं ये सब चीजें ठीक नहीं है क्योंकि ये आपको डिसीव करेंगी, लेकिन ये ठीक ओरिजिन कहाँ है, डिवाइन में, तो यहां बता रहे हैं कि यहां पे वो बिट्रे करती हैं क्योंकि वो इग्नोरेंस के अधीन है, लेकिन देयर यू फाइंड देम इन देयर ओरिजिनल ट्रूथ, वहां लव इज वन विद विजडम एंड वन विद स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें एक जगह श्री अरविंद कहते हैं कि व्हाट इज द ट्रायम्विरेट ऑफ मैनहुड, तो विजडम, लव एंड स्ट्रेंथ आर द ट्रायम्विरेट ऑफ मैंस मैनहुड, तो यहां पर वो बिट्रे कर देती हैं, तो वो बैलेंस नहीं है, लव है तो विजडम नहीं है, विजडम है तो प्रेम नहीं है, प्रेम है तो स्ट्रेंथ नहीं है, वीक लव है, तो वीक लव क्या हो जाता है, सेंटिमेंटल लव, जहां आदमी रोता भी लगता है, कहता है मैं अपना जीवन दे रहा हूं इत्यादि इत्यादि, दिस वीकनेस, पर जहां स्ट्रेंथ होगी, लव होगा, विजडम होगा और अपने ओरिजिनल स्प्लेंडर पर होगा तो ये समस्या नहीं होगी। Masters in a creation without flaw, possessors of their own infinitude, their mind a splendid sun of vision's rays, shaped substance by the glory of its thoughts, and moved amidst the grandeur of its dreams, imagination's great ensorcelling rod, summoned the unknown and gave to it a home. यहां पर क्या है, imagination is not regarded as anything to do with truth, है ना, ऐसे माना जाता है, ट्रूथ किसकी कि कौन जान सकता है, केवल रैशनल माइंड, हार्ट का अपना ट्रूथ है, इमेजिनेशन भी ट्रूथ को ओपन कर सकता है। शेरविंद कहते हैं देयर इज अ फैकल्टी कॉल्ड एज ट्रूथ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या है, सेम पावर माया इज हियर एज इमेजिनेशन, लेकिन अभी क्या है, इट इज अंडर द पोजिशन ऑफ डार्क फोर्सेस, तो हम इमेजिन करते हैं तो क्या करते हैं, कोरोना तो छोटा सा वायरस हो गया, उसकी पिक्चर, इमेजेस, देख के ऐसा लगता है पता नहीं, इमेजिनेशन भी इतनी भयानक हो गई है कि देखने से ही लगता है, कहीं कहीं कोई कोई जगह पर अच्छा एक इमेजिनेशन होता है, देख के ही लगता है कि ये डरावनी कोई चीज है, इमिजिएटली हमारा माइंड इमेजिन करता है द वर्स्ट. इमेजिनेशन इज अ पावर ऑफ गॉड. माँ कहती है इट इज अ फैकल्टी ऑफ फॉर्मेशन. जो आप इमेजिन कर रहे हो आप उसको प्रकट कर सकते हो. इट ऑलरेडी मतलब कि आपने एक जगत में कहीं पर उसको सृष्ट कर दिया. अब अगर वो भगवान के प्लान के से मिली हुई है तो वो हेल्प करेगी आपको द्वार खोलने के लिए. हाँ, वो फॉर्मेशन अगर भगवान के प्लान से नहीं मिली है, एक प्योरली इगोइस्टिक है, तो इट मे और मे नॉट वर्क. हो सकता है वर्क करे लेकिन वो अल्टीमेटली कोलैप्स करेगी क्योंकि वो डिवाइन प्लान से एक नहीं है. लेकिन इमेजिनेशन भी एक ट्रुथ से डिराइव करती है, इट्स ए पावर ऑफ फॉर्मेशन. There was no gulf between the thought and fact. Ever they replied like bird to calling bird. अब देखिए सिमली कितनी अच्छी है. सुनी होगी ना चिड़िया की आवाज, एक चिड़िया बोल रही है दूसरी. यहां पर गल्फ है फैक्ट. आपके थॉट्स तो हैं लेकिन फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या होते हैं यहां पर? सेंसेस के द्वारा जो चीज आप अनुभव करते हो उसको फैक्ट कहा जाता है. नाउ ये एक बहुत बड़ी फैलेसी है क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी ज्ञान की सीमा सेंसेस निर्धारित कर रही है. इसीलिए जब थॉट अपनी प्योर फ्लाइट में होता है तो फिलॉसफी को जन्म देता है और उसको फिलॉसफी कहते हैं, इसको साइंस कहते हैं कि हम तो फैक्ट पर हैं फिलॉसफी पर नहीं. क्यों? क्योंकि गल्फ है. एक फिलॉसफर जिस चीज को देख रहा है अपने रीजन को ऊपर ले जाके, जो बाहरी फैक्ट्स हैं अभी उसको नहीं कर पा रहे हैं. जैसे शेली की पोयम है या ब्लेक की पोयम है, कुछ दिन पहले मैं उसको पढ़ रहा था, इटर्निटी इन ए ग्रेन ऑफ सैंड. जिस दिन तुम एक मिट्टी के कण में जब तुम देख सकोगे उस शाश्वत को, रेडियंस को, स्प्लेंडर को, और एक मोमेंट के अंदर तुम इटर्निटी को देख सकोगे, ऐसे एक पोयम है विलियम ब्लेक की. Anyways, eternity in a grain of sand, if you put it, will come. Beautiful poem. First four lines are very beautiful. तो अब एक साधारण व्यक्ति जब यह poem पढ़ेगा या शेले की poem, I cannot give you what men call love, तो कहेगा हाँ ये idealistic emotion है. Real life में ऐसे नहीं होता है. यहाँ love का मतलब है पेट देखभाल करना, आटे दाल का भाव. you want to, I'll surely read it. It's the first four lines, one of the favorite ones. Why not? ये कोई हम लोग To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. ये तो बहुत बड़ी poem है. I don't want to flow into it. लेकिन अब देखिए साधारण व्यक्ति क्या कहेगा, ये हाँ poetic fantasy है, ये एक true experience है. He was a mystic poet incidentally. या परसी बेशंस शैली की पोयम जिसको शेरविंद कहते हैं ओवर माइंड की पंक्तियां हैं, लव पोयम है, रोमांटिक पोयम है. आई कैन नॉट गिव यू व्हाट मैन कॉल लव. अब साधारण व्यक्ति हाँ ये सब पोइट पोइट के लिए ठीक है, अभी उसको आटे दाल का भाव पता नहीं है, मर ही डाइड यंग, बट दिस इज द ट्रूथ. लेकिन अभी हम कहते हैं नहीं ये होता नहीं है, ये केवल कल्पना में है. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर थॉट और फैक्ट के बीच में हमने खाई बनाई हुई है. हम जो सेंसेस डिसाइड करती हैं ट्रूथ क्या है, लेकिन उस रियल वर्ल्ड में सेंसेस डिसाइड नहीं करेगी, इंट्यूशन और विजन डिसाइड करेगा. अब शेरविन बताते हैं ना एक कई जगह उनके एग्जाम्पल हैं लाइफ के, जब एक तो वो है जब माताजी से कोई रिक्वेस्ट करने आए कि एक प्रिंस ऑफ लंका आए हैं गोलकुंड में ठहरना चाहते हैं, तो माने कहा नहीं नहीं उसको ही विल नॉट स्टे मदर, लेकिन प्रिंस है लंका के. हाँ हाँ मैंने कह दिया है ही विल नॉट स्टे, माँ बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो माँ ने कहा देखो प्रिंस विंस कुछ नहीं है, माँ आपको कैसे पता, पूछने की जरूरत कर दी. ओ यू वांट टू टेस्ट द डिवाइन. वो बेचारा मुँह लटका के अब क्या बोलूँ, इतना बड़ा आदमी नीचे आता है, तो इतने में वो बाहर प्रिंस जी खड़े हैं और गेट से एक रिटायर्ड जज प्रवेश कर रहा है. वो इससे पूछता है ये यहाँ क्या कर रहा है, क्यों ये प्रिंस ऑफ लंका है? बोला कोई नहीं, तीन बार मैंने इसको कन्विक्ट किया हुआ है. अब देखिए अब ये एक इंट्यूटिव विजन है जो दिखा रहा है अंदर में. इसीलिए किसी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है कि फूल्स जज द मास्टर बाय द डिसाइपल्स. अरे ये तो मास्टर ने कैसे लोगों को चुना है. वाइज वंस जज द डिसाइपल्स बाय द मास्टर. उन्होंने चुना है, कुछ तो होगा मेटीरियल. क्योंकि हम वो नहीं देख पा रहे, हम बाहर का बिहेवियर देख रहे हैं जो भगवान देख पा रहे हैं. तो ये डिफरेंस है ट्रूथ और फैक्ट में. जब हम बाहर देखते हैं फैक्ट हम कहते हैं अरे, लेकिन जब अंदर का ट्रूथ देख लेते हैं तब बिल्कुल ही एक अलग विजन खुलता है. द विल ओबेड द थॉट द एक्ट द विल. देर वॉज ए हार्मनी वोवेन ट्विक्स सोल एंड सोल, ए मैरिज विद इटर्निटी डिविनाइज टाइम. सो इसमें सब कुछ है. देयर मैटर इज द स्पिरिट्स फर्म डेंसिटी. ये ओरिजिनल मैटर है. मैटर की ओरिजिन भी भगवान ही है और मैटर क्रिएट ही किया गया भगवान ने अपने अंदर से मैनिफेस्टेशन के लिए. इट इज अ, अगर आप मैटर में अभी लोग कहते हैं ना फाइव स्टेट्स कहते थे, नाउ दे कॉल द सेवन स्टेट्स. बीच में एक प्लाज्मा फोर्थ स्टेट आई थी. अल्टीमेटली साइंस इज कमिंग क्लोज टू दैट ओरिजिनल मैटर. ये मैटर जो है ये तो एकदम हाईली कंडेंस्ड मैटर है. इस तो अपनी सारी वो रिजुता और प्लास्टिसिटी सब लूज कर चुका है. तो ये ओरिजिनल मैटर है. वहां पे मैटर कैसा है, लेकिन वो उसकी बस प्रॉब्लम ये है कि जैसे अब गैसियस स्टेट में, अभी आप थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर जो हम लोग अनुभव करते हैं, अगर आपको कोई चित्र बनाना है तो आप पानी पर नहीं बनाओगे. कहते हैं ना उस पर, तो वो भी है पानी पर लिखी लिखाई, आप मिट जाएगी. आप हवा में नहीं बनाओगे. लोग बोलते भी हवा में चित्र खींच देना, नहीं टिकेगा. आप किस पर बनाओगे, धरती के ऊपर. तीनों ही एक ही मैटर की स्टेट्स हैं, लेकिन ये कंक्रीट है जिसके अंदर एक्सप्रेशन जो है सबसे अधिक सुंदर संभव है. इसीलिए भगवान ने ये एक्सट्रीम मटेरियल चुना है. इसकी कठिनाइयां हैं. हवा में आप कुछ ही बना सकते हो, क्षण भर के लिए रहेगा, दूसरा कोई देखे ना देखे आपने देख लिया. पानी पे आप चित्र खींच सकते हो, स्टिल वाटर में, समुद्र के पानी के नहीं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रहेगा. लेकिन इस पर जब आप खींचोगे तो वो रहेगा, कंक्रीटली रहेगा. इसलिए ये ठोस सबसे कठिन मीडियम भगवान ने चुना है एक्सप्रेस करने के लिए. ठीक है, मीडियम की कठिनाई है, लेकिन जो काम होगा वो भी परफेक्ट होगा. यही पूरा खेल यहाँ पे श्री अरविंद हम लोगों को बता रहे हैं. देयर मैटर इज द स्पिरिट्स फर्म डेंसिटी, एन आर्टिस्ट्री ऑफ ग्लैड आउटवर्डनेस ऑफ सेल्फ. क्या सुंदर लाइन है. आप गोल्ड जो बनाते हैं वो भी तो यही करते हैं ना. आप प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड तो केवल एक स्टैंडर्ड है 24 कैरेट्स. आप उसका कुछ नहीं बना सकते हो. तो यू हैव टू हैव उसमें इम्प्योरिटी डालनी पड़ती है 22 कैरेट्स, 20 कैरेट्स. जैसे जैसे अगर आप उसको और ठोस बनाना है तो थोड़ा इम्प्योरिटी डालनी पड़ती है. इम्प्योरिटी इज ए वे ऑफ सेइंग, लेकिन आपको उसको ठोस करना पड़ता है. अपने मोल्टेन स्टेट में वो श्रृंगार नहीं बन सकता है. वो वैल्यू उसकी वही है, वही ग्राम के हिसाब से वही भाव है. तो भगवान भी हम लोगों को गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाना चाहता है. मोल्टेन गोल्ड बना के अपने घर में वो सोने के बिस्किट इतने सारे वो नहीं करना चाह रहा है. ही वांट्स अस टू बिकम उनका गहना. A treasure house of lasting images where sense can build a world of pure delight. Senses abandoned nahi hai wahan par. Isiliye Shri Aurobindo kehte hain, it is no part of my yoga to crush the senses, but to refine them and to ennoble them, to heighten them, to divinize them. To crush nahi, hame farak nahi padta, hum kya kha rahe hain, kya pee rahe hain, kya dekh rahe hain. ये तो पूरा सेंसरी वर्ल्ड है. नहीं, सेंसेस आल्सो हैव टू बी रिफाइंड इनोबल्ड, क्योंकि अल्टीमेटली दे हैव टू यूनाइट विद द सुप्रामेंटल सेंस. अब ये सब अशुपति देखते हैं, अनुभव करते हैं. कितनी सुंदर लाइन है. इट्स सॉलिडिटी वॉज ए मास ऑफ हेवनली मेक, इट्स फिक्सिटी एंड स्वीट परमानेंस ऑफ चार्म मेड ए ब्राइट पेडिस्टल फॉर फेलिसिटी. Its body is woven by a divine sense. All bodies are partly created by the sense. Because एक सेंस फंक्शन नहीं करे तो आप देखिए आप कैसे बॉडी को परसीव करेंगे. बॉडीज बिल्ड, क्योंकि सब कुछ तो फॉर्मलेस स्टेट में है, तो हमको फॉर्म कैसे दिखाई देता है, ये मिस्ट्री है. अल्टीमेटली सब एक क्लाउड्स हैं, जो भी आप कहेंगे चार्जेस के. पार्टली इट इज बाई द सेंसेस. So, वहां पे डिवाइन सेंस बॉडीज को वीव कर रही है. प्रोलॉन्ग द नियरनेस ऑफ सोल्स क्लैश विथ सोल, Its warm play of external sight and touch reflected the glow and thrill of the heart's joy. Life's rapture kept forever its flame and cry. Oh, mind's climbing, brilliant thoughts, the spirit's bliss. Life's rapture kept forever its flame and cry. All that now passes lived immortal there, in the proud beauty and fine harmony of matter plastic to spiritual light. ये explain करता है कि कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं, हम प्रे तो कर रहे थे, कुछ हुआ नहीं, अल्टीमेटली डॉक्टर ने दवाई दी, नॉर्मल कोर्स में बीमारी ठीक हुई. सच में ऐसा होता है क्या भगवान? ये हमारी भूल है समझ. प्रॉब्लम क्या है कि मैटर नहीं रिस्पॉन्ड करता. आप देखेंगे जब आप प्रे करेंगे तो आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एवरीबडी, कई बार आप देखेंगे कि बाहर का जो शरीर का पार्ट है ना वो इमिजिएटली ठीक नहीं होता है, लेकिन अंदर में आपकी स्टेट चेंज हो जाती है. आप इनवर्डली उसी बीमारी के समय भी अंदर में आप एक जॉयस या पीस में रहते हैं, ये ऑब्जर्व किया होगा. फिर बीमारी क्यों नहीं ठीक होती है? ठीक होती है, लेकिन उसका पूरा कोर्स अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें आप देखेंगे इतना भयंकर नहीं होता जितना हो सकता था. अब अल्टीमेटली इमिजिएटली क्यों नहीं ठीक होता? बिकॉज मैटर इज नॉट येट प्लास्टिक टू स्पिरिचुअल लाइट. तो हमें करना क्या चाहिए? एवरी टाइम दैट वी प्रे, जब रोग है कुछ भी है, तो आप मैटर को उस लाइट से इन्वोक करके जोड़ने की चेष्टा कर रहे हो. आज नहीं हो रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो ड्रॉप ड्रॉप गिरते गिरते शिल के ऊपर निशान पड़ जाता है, मैटर प्लास्टिक हो जाएगा. तो हमें डेफिनेटली जब हम बीमार पड़ते हैं या कुछ भी शरीर की समस्या है, वी शुड इन्वोक द डिवाइन ग्रेस. माँ से किसी ने पूछा था शुड वी, बोली वाई नॉट, इफ यू कैन इन्वोक द डिवाइन ग्रेस टू रिमूव ए मॉरल डिफेक्ट फ्रॉम नेचर. तो ये भी तो एक फॉल्सहुड है, नहीं होना चाहिए रोग. तो हम अगर करते रहें तो एक दिन ये मैटर प्लास्टिक होगा, कालांतर में जो भी समय हमारे जीवन काल में भी होगा जिस हद तक हो सकता है, नहीं भी हुआ तो हम वी विल पेव द वे फॉर फ्यूचर. और दूसरी बात है कि अगर हम फिजिकल कल्चर करेंगे तो मैटर और प्लास्टिक होगा. तो ये फिजिकल कल्चर के माध्यम से और भगवान को, माँ की कृपा को, पीस को, जॉय को इन्वोक करके, शक्ति को इन्वोक करके, धीरे धीरे हम मैटर को प्लास्टिक बनाते हैं टू द स्पिरिचुअल लाइट. सो इस योग का प्रयोजन यही है. अब ये सब अशुपति देख के बहुत आनंदित होते हैं. उसके बाद वापस आते हैं, वो देखते हैं कि जब उस जगत से धीरे धीरे वो दूर देखते हैं कि उनका हृदय कहीं पर धड़क रहा है. बहुत सुंदर वर्णन है कि वो ट्रांस की अवस्था में ये सब उन्होंने एक्सपीरियंस किया था बॉडी के बाहर जाके, लेकिन उन्होंने बॉडी से लिंक नहीं छोड़ा था. और बिल्कुल विविड डिस्क्रिप्शन है कि वो देखते हैं कि वहाँ पे उनका हृदय, वो सरेंडर्ड सैक्रिफाइस्ड हार्ट, और तब वो उसमें वापस लौटते हैं. लेकिन अब जब वो लौटते हैं तो उनकी अवस्था ये होती है जैसे लोग पांडिचेरी आके चले जाते हैं. आपको बहुत प्रिय लग रहा था अपना जगह, अब आपको जाना वहीं है, वहां प्रॉब्लम कितनी भी हो, क्योंकि आपने अब वो देख लिया. चाहे कितने भी कठिनाई हो, घर में आपके बहुत कंफर्ट है, लेकिन आपको आने का वहीं मन कर रहा है घूम घूम के. क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसा देख लिया, कुछ ऐसा स्पर्श कर लिया. लेकिन अशुपति के साथ क्या है, उनको तो फ्री एंट्री है, लेकिन वो चाहते हैं कि अरे ये बाकी सबके लिए क्यों नहीं. तो अब वो क्या चाहते हैं कि वो जो मैंने वहां देखा है मैं उसमें चला जाऊं? नो. वो तो जैसे होता था ना कि जिस भगवान आपका डेटी है उसके लोक में जाके आप आनंद से रहिए, वो कहते यहां पर वो क्यों नहीं आएगा. और इसके लिए अब वो उस जगत को यहां पे बुला रहे हैं. वो कह रहे नो, नाउ आई वॉन्ट दिस वर्ल्ड हियर. तो उसी वर्ल्ड को स्थापित करने का पहला प्रयास इस आश्रम, लेकिन तब तक सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन प्रारंभ नहीं हुआ था. तो जो कुछ भी हो रहा था इट वॉज बिटवीन मदर, माँ उसको धारण करके डिसाइपल्स को दे रही थी. उनके अंदर रेजिस्टेंस, रिफ्यूजल्स, डिनायल्स, रिसेप्टिविटी, उसके अनुसार अलग अलग लेवल पे काम कर रही थी. 56 के बाद माता जी स्ट्रेटेजी चेंज करती हैं. अगर आप 57-58 की टॉक्स पढ़ो तो माँ कहती है नाउ आश्रम इज नो मोर कन्फाइंड टू दिस ज्योग्राफिकल बाउंड्री. माता जी की राइटिंग्स में लोग देखना नहीं चाहते हैं, पर वो कहती हैं अब जहां भी संसार में कोई भी खुला है, ओपन है टुवर्ड्स शोरबिंदोज टीचिंग, अब वो सब एक सूत्र में बांध लिए गए हैं. अब देखिए ये सत्य इस समय कोरोना काल में कई ऐसी चीजें भी हुई जो भयानक दिखती हैं, कई बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई। एक चीज ये हुई कि पहले आप देखिए लोग अपने अपने सेंटर में जगह जगह थे, अपने अपने टाइम पर मेडिटेशन करना नहीं करना, आश्रम का अलग एक रिद्म है, अपना रिद्म है। अभी आप देखेंगे कि थैंक्स टू पता नहीं किसके दिमाग में ये आइडिया है व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का, इट वॉज मेंट, अभी भी बोला जाता है उसको आश्रम ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप, पर इसमें जुड़े हुए हैं लोग न्यूयॉर्क, लंदन, दिल्ली, बेरमो, बांग्लादेश और सब आता है। आई सी इट, वो दूसरे ग्रुप्स में भी हूँ, बांग्लादेश के ग्रुप में आ जाएगा, टुडे इज थर्सडे मेडिटेशन टाइमिंग सो एंड सो दिस म्यूजिक, दर्शन डे समाधि दर्शन, ये क्या हो रहा है? अब वही ट्रुथ जो माने 1957 में बताया है वो ट्रुथ अब कंपेल होके इस साल एक्सप्रेस हो रहा है कि अब क्या है 6 बजे सुबह आप केवल ये नहीं कि अच्छा हम ट्यून करें, एक्चुअली लोगों के साथ आप जोड़ के वही म्यूजिक लगा करके एक इथीरियल स्पेस में आप जुड़ गए हैं, तो अब ये वो ट्रुथ है जो धीरे धीरे एक्सप्रेस हो रहा है। फिर उसके बाद 60 में माँ क्या बनाती है, श्री अरविंदो सोसाइटी, इसका एक लार्जर, ये वही उस जगत को यहां उतारने के लिए, और फिर ऑरोविल, और अब धीरे धीरे उसकी शाखाएं बढ़ती हुई पूरे जगत में। लेकिन प्रारंभ कहां होता है, अष्टपति की प्रार्थना के साथ, माँ उतरो, माँ उतरो, माँ उतरो। अब अष्टपति की जो ये अवस्था है जिसमें वो उनका जो हृदय है वो एक मंदिर बन गया है, जो ओरिजिनल मातृ मंदिर, अष्टपति का जो हृदय है उसका वर्णन है, लेकिन ये वर्णन आप देखेंगे कि मातृ मंदिर का भी वर्णन है बाहर से, ये इससे हम लोग रुकेंगे। Abandoned, it lay alone, imperishable, immobile, with excess of passionate will, his living, sacrificed and offered heart, absorbed in adoration mystical. अब वापस आ गए अपने हार्ट में, abandoned, छोड़ के चले गए थे, sacrificed, उनका हृदय, और कैसा, देखिए, immobile with excess of passionate will. श्री अरविंद को देख के ऐसा लगता है ना, भोलेनाथ बिल्कुल अभी एक बार, शेरविंद कहते हैं कि नाउ आई डोंट यू, जब भी मैंने कभी प्रयास किया है इवन ओवर माइंड फोर्स का तो कैटेस्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो जनरली ही विल नॉट। एक बार कोई माताजी को कुछ कह रहा था और अचानक शेरविंद अंडर हिज ब्रेथ वो कहते हैं हु इज शाउटिंग एट द मदर, और ऐसी रिपिल ऑफ शांति, पावरफुल शांति, पूरे विश्व युद्ध को लड़ रहे हैं। सो दैट इज द पावर इनसाइड, एक्सेस ऑफ पैशनेट विल, टर्न्ड टू इट्स फार ऑफ फाउंट ऑफ लाइट एंड लव, दिखाई नहीं अब दे रहा है क्योंकि अब वो मैटर के उसमें आ गए हैं अपने शरीर के अंदर। इन द ल्यूमिनस स्टिलनेस ऑफ इट्स म्यूट अपील, इट लुक्ड अप टू द हाइट्स इट कुड नॉट सी, ही हैड गॉन आउट, शरीर के बाहर जाके वो जगत में भ्रमण करके आए, अब वो शरीर के वॉल्ट के अंदर आ गए हैं। इट यर्न फ्रॉम द लॉन्गिंग डेप्थ्स इट कुड नॉट लीव, देखिए मातृ मंदिर का, इट टर्न टुवर्ड द हाइट्स इट कुड नॉट सी। इन द सेंटर ऑफ हिज वास्ट एंड फेटफुल ट्रांस, हाफ वे बिटवीन हिज फ्री एंड फॉलन सेल्फ्स, ओरिजिनल ही बिकेम ए पोर्शन ऑफ द यूनिवर्सल गेज, फ्री सेल्फ, यहां पर उन्होंने स्वयं को स्वेच्छा से रिनाउंस करके बांधा हुआ है। फ्री सेल्फ इज द सेंट्रल बीइंग, फॉलन सेल्फ इज अगेन द साइकिक बीइंग को यहां पे पर्पसली। माता जी एक जगह बताती है ना, शिवबिंदु इज ए पोर्शन ऑफ द लॉर्ड, जिन्होंने जानबूझकर अपने आप को सुप्रीम लॉर्ड से अलग करके, अलग नहीं हो सकते, लेकिन वो बताती है, इसको एक्सप्लेन किया उन्होंने, जानबूझ के उन्होंने मैटर में प्लंज किया इस रूपांतरण के हेतु, और युग युग में वो ये कार्य को करते रहे। एक हाफ वे बिटवीन हिज फ्री एंड फॉलन सेल्फ, इंटरसीडिंग ट्विक्स्ट गॉड्स डे एंड द मॉर्टल्स नाइट, एक्सेप्टिंग वर्शिप एज इट सिंगल लॉ, एक्सेप्टिंग ब्लिस एज द सोल कॉज ऑफ थिंग्स, सृष्टि का आदि स्वर क्या है, आनंद, क्योंकि वो देख करके आए, और क्या करना है हमें, वर्शिप, यहां वर्शिप का मतलब है पूरी तरह सरेंडर, यहां बाहरी कर्मकांड की बात नहीं है। Refusing the austere joy which none can share, refusing the calm that lives for calm alone, to her it turned, for whom it willed to be. उनको ये मौका मिला है कि आप सुप्रामेंटल वर्ल्ड में आके रहने लगी है, रिफ्यूजिंग दैट जॉय, वो जॉय जो हिमालय की चोटी पर लोग कहते हैं कि फला फला गुफा में बहुत बड़े एक योगी रहते हैं, कितना इंप्रेस हो जाते हैं लोग, ठीक है रहते हैं, व्हाट्स द बिग डील, मतलब दे आर एट मोस्ट एक संभावना कि मनुष्य के अंदर ही संभावना है, लेकिन उन्होंने तो त्याग दिया ना इस फील्ड को, दिड ऑस्टियर जॉय दैट नन कैन शेयर एंड रिफ्यूजिंग द काम दैट लिव्स फॉर काम अलोन टू हर इट टर्न फॉर होम इट विल टू बी टू हर इज द डिवाइन मदर इन द पैशन ऑफ इट सॉलिटरी ड्रीम इट ले लाइक ए क्लोज्ड साउंडलेस ओरेटरी. मातृ मंदिर का इनमोस्ट चेंबर, क्लोज्ड साउंडलेस ओरेटरी वेयर स्लीप्स ए कॉन्सेक्रेटेड आर्जेंट फ्लोर. आर्जेंट इज स्पिरिचुअल कलर ऑफ स्पिरिचुअल इज आर्जेंट यानी सिल्वर एंड सुपरमेंटल लाइफ इज गोल्ड. माता जी इसको इसी प्रकार से वर्णन करती हैं, कहती हैं कि अगर तुम सुपरमेंटल लाइफ के दृष्टि से देखो तो हमारी सारी स्पिरिचुअल लाइफ इंक्लूडिंग वो साइकिक अर्ज इत्यादि दे फेड बिफोर इट. ऐसे बताते हैं कि बिल्कुल पेल हो जाते हैं इन कंपैरिजन, सारी मनुष्य की जो स्पिरिचुअल उपलब्धियां हैं सुपरमेंटल लाइफ के सामने दे पेल. तब वो डिफरेंस बताती हैं, द स्पिरिचुअल लाइफ इज लाइक मेड ऑफ सिल्वर एंड द सुपरमेंटल लाइफ इज मेड ऑफ गोल्ड. इसीलिए हम देखते हैं कि फिजिकल अर्थ लाइफ में इसका क्या सिंबल है, स्पिरिचुअल लाइफ एट इट्स हाइएस्ट इज द फुल मून बट द सुपरमेंटल लाइट इज द फुल ब्लेज ऑफ द सन. आप मून है, चार्मिंग है, सब है, लेकिन मून आपके सीजन्स नहीं क्रिएट कर सकता है, मून जीवन नहीं देता है, सुकून देता है, शांति देता है थोड़ी देर के लिए, पोइट को इंस्पायर कर सकता है, पागल भी कर सकता है, डिपेंड करता है. लेकिन सुपरमेंटल सन जब निकलता है तो सारे मून फेड हो जाते हैं, तारे छिप जाते हैं शर्म में. तारे कौन से, गाइड्स, स्टार्स आर सिंबल ऑफ गाइड्स. तभी तो अब यहां पर आप कैसनोव जाइए तो एक से एक समाधि है, नलनी दा इत्यादि की सत्यकर्मा माँ ने लिखा है, माई फेथफुल वन, नाम भी नहीं सुना होगा लोगों ने. एक एक लोग थे, डॉक्टर राजगम, तो अमृतदा, अब ये सब अपने आप में योगी. लेकिन क्यों ये, क्योंकि सूर्य जहां सुपरमेंटल सन हो तो तारे वहां क्या निकल के कहेंगे, हम भी हैं. फेड हो जाते हैं. तो इस प्रकार की कुछ वर्णन है. वेयर स्लीप्स ए कंसेक्रेटेड आर्जेंट फ्लोर लिट बाय ए सिंगल एंड अनट्रेम्बलिंग रे. देखिए मातृ मंदिर का सेंट्रल अनट्रेम्बलिंग रे, वो रे कौन सी है, हमारे ही साइकिक बीइंग के अंदर जो भगवान के साथ लिंक, लेकिन बाहर में वो मातृ मंदिर के रूप में प्रकट किया है माने. एंड एन इनविजिबल प्रेजेंस नील्स इन प्रेयर. कोई फोटो कुछ नहीं है, इनविजिबल प्रेजेंस नील्स इन प्रेयर, केवल सिंबल है. ऑन सम डीप ब्रेस्ट ऑफ लिबरेटिंग पीस ऑल एल्स वॉज सेटिस्फाइड विथ क्वाइट्यूड दिस ओनली न्यू देयर वॉज ए ट्रूथ बियॉन्ड ऑल अदर पार्ट्स वेयर डम्ब इन सेंटर्ड स्लीप कंसेंटिंग टू द स्लो डेलिबरेट पावर. नया जगत कोई मैजिक से नहीं बनता है. अगर कोई ये बोल रहा है कि हम आपको माताजी श्री अरविंद का योग, आप 10,000 रुपये दीजिए, हम 7 दिन का एक कोर्स करा देंगे, प्लीज जस्ट डोंट गो. ये इम्पॉसिबल है, नया जगत ऐसे बन ही नहीं सकता है. इसकी तो फाउंडेशंस में टाइम लग जाता है, इट्स सो डीप. श्री अरविंद कहते हैं रूट्स वे नॉट डीप इनफ. ये हम लोग लंबे प्रोजेक्ट में है, लेकिन माताजी का प्रोजेक्ट है, सो द जॉय ऑफ इट. सो यहाँ पर उसका वर्णन है अशुपति की क्या अवस्था है. अब वो आ गए हैं देख करके, अब उनको यहां बनाना है, लेकिन उनको अंदर में क्या भाव रखना है. कंसेंटिंग टू द स्लो डेलिबरेट पावर विच टॉलरेट्स द वर्ल्ड्स एरर एंड इट्स ग्रीफ कंसेंटिंग टू द कॉस्मिक लॉन्ग डिले टाइमलेसली वेटिंग थ्रू द पेशेंट ईयर्स हर कमिंग दे हैड आस्क्ड फॉर अर्थ एंड मेन दिस वॉज द फायरी पॉइंट That called her now. Only the mother, वो यहाँ पे ये नवीन सृष्टि जो देख के आए हैं वो क्रिएट कर सकती है. एक डिसाइपल ने श्री अरविंद से पूछा, मेरा ये मानना है कि कि यदि माँ चाहे तो एक क्षण भर में वो सुपरमेंटल वर्ल्ड को मैनिफेस्ट कर सकती हैं, लेकिन वो सेम चीज नहीं रहेगी जैसा कि वो इवोल्यूशन के प्रोसेस से होगी। तो श्री अरविंद कहते हैं एब्सोल्युटली ट्रू, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। यानी ये नहीं कि वो वर्ल्ड वैसा का वैसा, तो हम तो वैसे ही रहेंगे, हमारा क्या संबंध रहेगा सुपरमेंटल बींग्स के साथ, वही जो अभी रिलीजियस संबंध है। हम नहीं बनेंगे वो सुपरमेंटल वर्ल्ड बींग्स, आ जाएंगे यहाँ वो धरती को सब, लेकिन आप वहीं के वहीं रहेंगे। लेकिन माँ श्री अरविंद ये नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी उनके बच्चे इवॉल्व करें, लेकिन इवॉल्व करने के लिए वी हैव टू एंगेज इन द एफर्ट। दूसरा डिसाइपल कहता है कि मेरा ये मानना है कि यदि हमारे अंदर इंटेग्रल सिंसेरिटी हो तो श्री माँ इमिजिएटली सुपरमेंटल वर्ल्ड क्रिएट कर सकती हैं। श्री अरविंद कहते हैं इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। इंटेग्रल सिंसेरिटी मतलब आपकी एक एक सेल सब कुछ पूरी तरह सेंटर्ड होके डिवाइन की तरफ। तो इसलिए भगवान जानते हैं कि ये कठिन काम है, पर निर्णय ले लिया है, ऊपर से सैंक्शन हो गया है, तो ये तो होके रहेगा। लेकिन तब तक क्या करना है, कंसेंटिंग टू द कॉस्मिक लॉन्ग डिले, द पावर दैट टॉलरेट्स वर्ल्ड्स एरर एंड ग्रीफ। हमको भी वैसे ही बनना है। ठीक है, हम सबके अंदर कमियां हैं, गलतियां हैं, संसार में भी है, सुख भी हो रहा है, अभी दुख भी हो रहा है। श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि क्या डिफरेंस है एक साधक में और साधारण मनुष्य में, दोनों को तो मैं देखता हूं कि एक जैसे व्यवहार करते हैं। श्री अरविंद कहते हैं हाँ, लेकिन एक डिफरेंस है जो तुम नहीं देख पा रहे हो। क्या डिफरेंस है? साधारण जीवन में व्यक्ति उस अज्ञान में धंसा हुआ है और उसी में रहना चाह रहा है। साधक ने अपने अंदर निर्णय ले लिया है कि नहीं, मुझे इसके बाहर निकलना है, तो उसकी यात्रा प्रारंभ हो गई है बाहर निकलने की। आप ये नहीं देख पा रहे हो, लेकिन वो आपको टाटा बाय बाय कर रहा है चेतना के किसी कोने से, और एक दिन वो इस जोन के बाहर चला जाएगा, लेकिन आप इसी में खुश हो, ये डिफरेंस है। बाहर से आपको नहीं पता चलेगा ये चीज। इसका निर्णय ऑफकोर्स कौन साधक है नहीं है, इसका निर्णय कोई बाहरी उससे नहीं होता है। अंदर में जिसके अंदर अभीप्सा है कि मैं इस अज्ञान अचित अंधकार से बाहर निकलूं, उसने ये निर्णय ले लिया है कि मैं मेजेस ऑफ इग्नोरेंस से बाहर निकलूं, और वो उस दिशा में चल पड़ा है। और एक लंबे समय तक हो सकता है आप भी साथ साथ चल रहे हो, आपकी जर्नी माउंट एवरेस्ट तक है, उसको कोई नीचे हिल स्टेशन में जाके हम शिमला ऊटी घूम के आते हैं, तो वो वहाँ आके रुक जाएगा, कहेगा देखो कितनी अच्छी यहाँ बर्फ है, रुको। तो ये तो चल पड़ा है आगे की तरफ, वो तो वहाँ जाएगा। थोड़े दिन शिमला ऊटी में रुका तो रुका, लेकिन जाना तो उसको माउंट एवरेस्ट, तो वो निकल जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है, एक लंबे समय तक आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। और आउटर मैन इज द लास्ट टू चेंज, और इसीलिए वो पावर टॉलरेट करती है, क्योंकि वो जान गई है कि वो डिवाइन मदर नोज, बाहर से यू डोंट नो डिवाइन मदर। इसलिए भगवान सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, वो देखते हैं डिफरेंस कि ये इसका निर्णय कुछ और है और ये कहाँ जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो जानबूझ के उसमें रह रहा है, एंजॉय कर रहा है, भगवान की तरफ डिनायल है। शेरविंद एक जगह कहते हैं, जब निरोद्धा कहते हैं कि वो यहां से क्यों चला गया, तो कहते हैं हमने तो उसे बहुत रोकने की चेष्टा की थी, तो हमने तो नहीं भेजा, तो कहते हैं भगवान फोर्सिबली क्यों नहीं रोक देते हैं, तो कहते हैं कि भगवान रोक लें, लेकिन अब उसको कम से कम मेरे रोकने से तो रुके। तो कहते व्हाट अबाउट द ग्रेस, कहते यस बट इफ ए पर्सन परसिस्टेंटली रिफ्यूजेस द ग्रेस, तो इस हद तक वो टॉलरेट करते हैं वर्ल्ड्स एरर एंड ग्रीफ। As long as you are open to grace, there is hope. इसका मूल ये है, क्योंकि grace जानती है कि ये काम सरल नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन आपके अंदर यदि वो consent है कि no mother, I want to reach there, तो आज नहीं तो कल one will reach. और दूसरा है कि कौन करे इतना effort, जब बन जाएगा supramental world, हम भी उसमें कहते ना बहती गंगा में हाथ धो लेंगे, तो क्या पता गंगा आपके रास्ते से निकले या ना निकले। नमस्ते।